अध्याय 22 एकांश विश्लेषण आइटम एनालिसिस। एकांश का अर्थ एवं विशेषताएं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइटम। परीक्षण निर्माता एकांशों को लिख देने के बाद तथा कुछ विशेषज्ञों के सुझाव के आलोक में पर्याप्त संशोधन कर लेने के बाद उनका एकांश विश्लेषण करता है। एकांश विश्लेषण एक ऐसी प्रविधि है जिससे एकांशों की वैधता तथा उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। वह सांख्यिकीय प्रविधियों का ऐसा सेट है जिसके द्वारा यह साफ साफ पता चल जाता है कि कौन एकांश प्रभावशाली है तथा कौन एकांश बेकार है तथा किन एकांशों में परिवर्तन या परिमार्जन की आवश्यकता है। ये 1980 ने एकांश विश्लेषण को इन शब्दों में परिभाषित किया है। कोट, एकांश विश्लेषण मूल रूप से एकांशों की प्रभावशीलता की माप करने के ख्याल से प्रत्येक एकांश के प्रति किए गए अनुक्रियाओं के पैटर्न का एक परीक्षण है। अनकोट, पैराग्राफ चेंज के द्वारा दी गई इस सरल परिभाषा में से कुछ यह बिल्कुल ही स्पष्ट है कि एकांश विश्लेषण द्वारा मूल रूप से एकांशों की प्रभावशीलता का मापन होता है। इसके अलावा इस प्रविधि द्वारा यह भी पता लग जाता है कि किन किन एकांशों में अस्पष्टता होने के कारण या तो वे बेकार हैं या उनमें कुछ परिमार्जन मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता है। पैराग्राफ चेंज एकांश विश्लेषण के कुछ विशेष उद्देश्य हैं जिनकी चर्चा यही अपेक्षित है। प्रमुख ऐसे उद्देश्यों का वर्णन निम्नांकित है। एकांश विश्लेषण का एक मुख्य उद्देश्य एकांशों के कठिनता स्तर का पता लगाना है। कौन एकांश कठिन डिफिकल्ट है, कौन आसान ईजी है तथा किसका कठिनता स्तर बीचों बीच का है आदि बातों का पता एकांश विश्लेषण द्वारा आसानी से हो जाता है। दो, एकांश विश्लेषण का दूसरा प्रमुख उद्देश्य एकांशों के विभेदन शक्ति का पता लगाना होता है। कुछ एकांश ऐसे होते हैं जिसकी विभेदन शक्ति अधिक होती है तथा कुछ एकांश ऐसे होते हैं जिनकी विभेदन शक्ति कम या नहीं होती है। विभेदन शक्ति से तात्पर्य श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा वैसे व्यक्तियों जिनके पास परीक्षण द्वारा मापे जाने वाले गुण कम हैं के बीच स्पष्ट अंतर करने की क्षमता से होती है। सामान्यतः एकांश विश्लेषण के बाद वैसे एकांशों को परीक्षण में अंतिम रूप से चुनकर सम्मिलित किया जाता है जिनमें विभेदन शक्ति अधिक होती है। कम विभेदन शक्ति वाले एकांशों को छांट दिया जाता है या फिर इनमें उपयुक्त एक परिमार्जन किया जाता है। तीन, एकांश विश्लेषण द्वारा बहुविकल्पी एकांशों के आसेधकों डिस्ट्रैक्टर्स की प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस की भी परख हो जाती है। आसेधक से तात्पर्य वैसे अनुक्रिया विकल्प रिस्पॉन्स अल्टरनेटिव से होता है जो सही उत्तर के समान दिखते हैं परंतु सही उत्तर होते नहीं हैं। बहुविकल्पी एकांश मल्टीपल च्वाइस आइटम की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि उसके आसेधक प्रभावशाली इफेक्टिव हो। चार, एकांश विश्लेषण का उद्देश्य यह भी पता लगाना होता है कि परीक्षण का कोई एकांश ठीक ढंग से क्यों काम नहीं कर रहा है और उसमें किस प्रकार के परिमार्जन की आवश्यकता है ताकि वह ठीक ढंग से कार्य करना प्रारंभ कर दे। पैराग्राफ चेंज स्पष्ट है कि एकांश विश्लेषण शोधकर्ता को एकांशों के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण एवं सार्थक सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिसका उपयोग करके परीक्षण के एकांशों को दुरुस्त बनाया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज एकांश की कठिनता आइटम डिफिकल्टी एकांश की कठिनता स्तर से तात्पर्य व्यक्तियों के उस अनुपात या प्रतिशत से होता है जो किसी एकांश का उत्तर सही सही दे पाता है। एकांश की कठिनता स्तर को अंग्रेजी के पी अक्षर से सांकेतिक किया जाता है। यह अनुपात या प्रतिशत जितना ही अधिक होता है एकांश को उतना ही आसान समझा जाता है यानी उसकी कठिनता स्तर कम होता है। किसी एकांश के पी का अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1.0 हो सकता है या उस समय पाया जाता है जब किसी एकांश का उत्तर सभी व्यक्तियों ने सही सही दिया हो। किसी एकांश के पी का न्यूनतम मान लोएस्ट वैल्यू 0 हो सकता है और उस परिस्थिति में पाया जाता है जब सभी उत्तरदाताओं या व्यक्तियों ने गलत उत्तर दिया हो। पी स्तर से यह पता नहीं चलता है कि कोई एकांश अच्छा या बुरा है, इससे सिर्फ यह पता चलता है कि एकांश कठिन या आसान है। एकांश का कठिनता स्तर यानी पी याद करने का सामान्य सूत्र इस प्रकार है, P=R/N। यहाँ P = एकांश का कठिनता स्तर डिफिकल्टी लेवल, R सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की संख्या, N व्यक्तियों की कुल संख्या। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि एक परीक्षण के किसी एकांश आइटम को 100 छात्रों में से 60 छात्रों ने सही सही उत्तर दिया। इस एकांश का कठिनता स्तर उपयुक्त सूत्र के अनुसार P = 60/100 = 0.60 होगा। पैराग्राफ चेंज, एकांश की पी को सभी उत्तरदाताओं या व्यक्तियों द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर न करके इन उत्तरदाताओं के कुछ निश्चित अंश पोषण के भी आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में पहले सभी उत्तरदाताओं के परीक्षण टेस्ट के कुल प्राप्तांक के आधार पर उच्चतम से न्यूनतम की ओर सुव्यवस्थित करके उसमें से ऊपर के 27% तथा नीचे के 27% व्यक्तियों का चयन किया जाता है। ऊपर के 27% व्यक्तियों के समूह को उच्च समूह तथा नीचे के 27% व्यक्तियों के समूह को निम्न समूह कहा जाता है। स्पष्टतः उच्च समूह एक श्रेष्ठ समूह होता है तथा निम्न समूह एक हीन समूह होता है। इस तरह से बीच के 46% व्यक्तियों को हटा दिया जाता है और मात्र 54% 27+27% के ही आधार पर एकांश के कठिनता स्तर की जांच की जाती है। ऐसी परिस्थिति में ज्ञात किया कठिनता स्तर यानी पी का मान लगभग वही होता है जो सभी केसेस यानी 40%+54% = 100% केसेस के आधार पर होता है। ऐसी स्थिति में पी ज्ञात करने की का सूत्र इस प्रकार होता है, P = RU + R1/NU + N1। यहाँ P = एकांश की कठिनता स्तर, RU उच्च समूह में सही सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की सहायता और R1 निम्न समूह में सही सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की संख्या, NU उच्च समूह के व्यक्तियों की कुल संख्या, N1 निम्न समूह में व्यक्तियों की कुल संख्या। मान लिया जाए कि किसी बुद्धि परीक्षण को 400 व्यक्तियों पर क्रियान्वयन किया जाता है जिसकी कुल प्राप्तांक के आधार पर उन्हें उच्च स्तर से निम्न स्तर सुव्यवस्थित किया जाता है, जिसमें से ऊपर 27% अर्थात 108 व्यक्तियों का चयन तथा नीचे से 27% अर्थात 108 व्यक्तियों का चयन कर लिया जाता है। NU = 108 हो गया तथा N1 = 108 हो गया है। अब थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि एकांश संख्या 4 पर NU से 70 व्यक्तियों ने सही जवाब दिया तथा N1 जिसमें भी 108 व्यक्ति थे से 50 व्यक्तियों ने सही जवाब दिया। अतः सूत्र 2 के अनुसार यहां संख्या 4 का P इस प्रकार ज्ञात होगा, P = RU + RY NU + NL = 70+50 / 108+108 = 120/216 = 0.555 = 0.56। कभी कभी यह देखा गया है कि बुद्धि परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण के एकांशों का सही उत्तर देते समय उत्तरदाता अपने ज्ञान के आधार पर नहीं बल्कि मात्र अटकलबाजी के आधार पर सही उत्तर ढूंढ निकालते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उस एकांश का सही उत्तर देने वालों की वास्तविक संख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप पी का स्तर बढ़ जाता है। जैसे यदि 100 छात्र एक परीक्षण के किसी एकांश पर जवाब दिए हैं और यदि इसमें से 60 ने अपने ज्ञान के आधार पर उत्तर दिया है तो P = 60 हुआ, परंतु मान लिया जाए इसमें से 10 ऐसे छात्र हैं जो मात्र अटकलबाजी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि 50 ही ऐसे छात्र हैं जो अपने वास्तविक ज्ञान के आधार पर उस एकांश पर उत्तर दिया है। अतः वास्तविक P = 0.50 ही है, लेकिन अटकलबाजी के आधार पर सही उत्तर देने वालों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण P = 0.50 से बढ़कर 0.60 हो गया है। ऐसी परिस्थिति में शोधकर्ताओं एवं शोध मनोवैज्ञानिकों की आम राय यह है कि एकांश का पी या कठिनता स्तर ज्ञात करने के पहले संभावित अटकलबाजी है के लिए संशोधन कर लिया जाए। इसके लिए इन लोगों ने एक विशेष सूत्र दिया है जो निम्नांकित है, S = R - W/K - L, जहां S = संशोधित प्राप्तांक, R = सही अनुक्रियाओं की संख्या, W = गलत अनुक्रियाओं की संख्या, K = एकांश में प्रयोग किए गए अनुक्रियाओं विकल्पों की संख्या। उदाहरण, मान लिया जाए कि बुद्धि परीक्षण के किसी एकांश जैसे एकांश संख्या 10 को 100 छात्रों में से 80 छात्रों ने सही सही उत्तर दिया और 20 छात्रों ने गलत उत्तर दिया। यह भी मान लिया जाए कि प्रत्येक एकांश के लिए 5 से 5 अनुक्रिया विकल्प थे। ऐसी परिस्थिति में असंशोधित प्राप्तांक उस एकांश पर 80 होगा और इस तरह से पी सूत्र 1 के अनुसार RYN = 80/100 = 0.80 होगा। परंतु इस 80 प्रतांक में कुछ वैसे लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने मात्र अटकलबाजी के आधार पर उत्तर सही कर दिया हो। अतः सूत्र 3 के अनुसार इसका संशोधन करने पर संशोधित प्रतांक इस प्रकार आएगा, एस इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू बाई के माइनस एल इज इक्वल टू 80 माइनस 20 बाई 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 80 माइनस 20 बाई 4 इज इक्वल टू 80 माइनस 5 इज इक्वल टू 75। चूँकि 80 में सिर्फ मात्र 75 छात्रों ने ही अपने ज्ञान के आधार पर एकांश संख्या 10 पर सही सही उत्तर दिया है, अतः एकांश संख्या 10 का पी इज इक्वल टू 75/100 0.75 होगा, न कि 80/100 इज इक्वल टू 0.80 होगा। एकांश का आदर्श कठिनता स्तर कितना होना चाहिए? शोध मनोवैज्ञानिकों का आम मत यह है कि परीक्षण के एकांश के कठिनता स्तर का सीधा संबंध परीक्षण की विश्वसनीयता से होता है, अतः एकांश का यह कठिनता जिससे परीक्षण की विश्वसनीयता अधिकतम हो जाती है को एक आदर्श कठिनता स्तर समझा जाता है। शोध मनोवैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी परीक्षण के एकांशों का आदर्श कठिनता स्तर इस परीक्षण के एकांशों की कुल संख्या तथा संयोग प्राप्तांक पर निर्भर करता है। 100 एकांश वाले किसी परीक्षण का आदर्श कठिनाई स्तर कितनी होगी उसे निम्नांकित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्टिमल डिफिकल्टी लेवल इज इक्वल टू सी एस प्लस पी एस माइनस सी एस बाई 2। यहाँ सी एस इज इक्वल टू संयोग प्राप्तांक चांस स्कोर, पी एस इज इक्वल टू पूर्ण प्राप्तांक परफेक्ट स्कोर इज इक्वल टू 0.50 प्लस 1.00 माइनस 0.50 बटा 2 इज इक्वल टू 0.75। यहाँ संयोग प्राप्तांक यानी 50 को अनुपात में बदलकर 0.50 कर दिया गया है तथा पूर्ण प्राप्तांक 100 को अनुपात में बढ़ाकर 1 कर दिया गया है। तरफ चेंज स्पष्ट हुआ कि इस परीक्षण पर एकांशों का आदर्श कठिनता स्तर 0.75 होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में इस परीक्षण के प्रत्येक एकांश पर 75% छात्रों का उत्तर सही सही होना चाहिए। फ्रेडरिक लॉर्ड ने सूत्र 4 द्वारा एकांशों के आदर्श कठिनता स्तर तय करने की विधि की आलोचना की है और कहा है कि इस विधि द्वारा एकांश की कठिनता स्तर के बारे में लगाया गया आकलन काफ़ी कम होता है क्योंकि कठिन एकांशों द्वारा आसान एकांशों की अपेक्षा अटकलबाजी या अन्य सामान्य त्रुटियां अधिक बढ़ जाती हैं और इस तथ्य को सूत्र 4 में नज़रअंदाज किया गया है क्योंकि अपने अध्ययन के आधार पर बतलाया है कि दो विकल्पीय अनुक्रिया वाले एकांशों का आदर्श कठिनता स्तर 0.85, 3 विकल्पीय अनुक्रिया वाले एकांशों का कठिनता स्तर 0.774, विकल्पीय अनुक्रिया वाले एकांशों का कठिनता स्तर 0.74 तथा 5 विकल्पीय अनुक्रिया वाले एकांशों का कठिनता स्तर 0.69 होता है। इसे तालिका 20 में और अधिक स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है। पैराग्राफ चेंज तालिका 20 दो विभिन्न विधियों द्वारा विभिन्न अनुक्रिया विकल्प रखने वाले एकांशों के आदर्श कठिनता स्तर। अधिकतर शोध मनोवैज्ञानिकों का मत है कि सूत्र 4 द्वारा परिकलित आदर्श कठिनता स्तर तथा लॉर्ड द्वारा निर्धारित आदर्श कठिनता स्तर में लॉर्ड द्वारा निर्धारित कठिनता स्तर अधिक दुरुस्त एवं वैज्ञानिक है। अतः लॉर्ड द्वारा बतलाए गए कठिनता स्तर को ही एक उत्तम एवं आदर्श कठिनता स्तर माना जाना चाहिए। पर्यवेक्षण एकांश की विभेदन शक्ति। एकांश की विभेदन शक्ति या विभेदन सूचकांक एकांश विश्लेषण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। एकांश की विभेदन शक्ति से तात्पर्य एकांश की वैसी शक्ति से होता है जिसके द्वारा एकांश व्यक्तिक विभिन्नता को दिखलाता है। दूसरे शब्दों में विभेदन शक्ति वह है जिसके द्वारा एकांश सफल व्यक्ति या उत्तरदाता तथा असफल व्यक्ति या उत्तरदाता के बीच स्पष्ट विभेद कर पाता है। बीन 1953 ने विभेदन सूचकांक को इस प्रकार परिभाषित किया है, कोट, मापे जाने वाले शील गुण या शील गुणों के समूह के रूप में श्रेष्ठ व्यक्तियों से अलग करने की किसी एकांश की क्षमता को विभेदन सूचकांक कहा जाता है, अनकोट। ये 1980 ने विभेदन शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है, अनकोट, विभेदन शक्ति से तात्पर्य उस क्षमता से होता है जिसमें एकांश किसी परीक्षण पर उच्च उपलब्धि प्राप्तकर्ता तथा निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ता के बीच अंतर करता है, अनकोट। पैराग्राफ चेंज इसी तरह की अन्य कई परिभाषाएँ शोध मनोवैज्ञानिकों ने दी है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभेदन शक्ति एकांश की वह शक्ति होती है जिसके सहारे वह श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा निम्न व्यक्तियों के बीच दूध या दूध और पानी या पानी का पानी के समान अंतर कर देता है। स्पष्टतः इस तरह के ही एकांश परीक्षण टेस्ट में होती है। तरह चीज विभेदन शक्ति तीन प्रकार के होते हैं। अ धनात्मक विभेदन शक्ति पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर, जब एकांश का स्वरूप ऐसा होता है कि उस पर असफल व्यक्तियों के समूह की तुलना में सफल व्यक्तियों या श्रेष्ठ व्यक्तियों के समूह से अधिक लोग सही उत्तर देते हैं, तो एकांश के इस तरह के विभेदन शक्ति को धनात्मक विभेदन शक्ति कहा जाता है। ऐसे एकांशों को परीक्षण निर्माणकर्ता अंतिम रूप से परीक्षण में चयन सम्मिलित कर लेता है। पर चेंज ब ऋणात्मक विभेदन शक्ति नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर, जब एकांश का स्वरूप ऐसा होता है कि उस पर सफल व्यक्तियों के समूह या श्रेष्ठ व्यक्तियों के समूह की तुलना में असफल व्यक्तियों या निम्न व्यक्तियों के समूह से अधिक लोगों सही उत्तर देते हैं, तो एकांश के इस तरह के विभेदन शक्ति को ऋणात्मक विभेदन शक्ति कहा जाता है। ऐसे एकांशों को परीक्षण निर्माणकर्ता अनुपयुक्त समझ कर रद्द कर देता है। स अविभेदन शक्ति, जब एकांश का स्वरूप ऐसा होता है कि उच्च या श्रेष्ठ समूह से तथा निम्न या असफल समूह से सही उत्तर देने वालों की संख्या बराबर बराबर होती है, तो एकांश के इस तरह की क्षमता को अविभेदन शक्ति कहा जाता है। ऐसे एकांशों को भी परीक्षण निर्माणकर्ता अर्थहीन एवं उद्देश्य सिद्ध न करने वाला समझकर छांट देता है। पैराग्राफ चेंज, एकांश के विभेदन शक्ति ज्ञात करने की कई विधियां हैं जिनमें निम्नलिखित दो विधियां अधिक लोकप्रिय हैं। और दो अनुपातों या प्रतिशतों के बीच अन्य की सार्थकता की जांच विधि व सहसंबंधात्मक विधि, इन दोनों विधियों का वर्णन निम्नलिखित है। और दो अनुपातों या प्रतिशतों के बीच अंतर की सार्थकता की जाँच विधि, मेथड ऑफ टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट बिटवीन टू प्रोपोर्शंस और परसेंटेज, इस विधि द्वारा एकांश की विभेदन शक्ति डिस्क्रिमिनेशन पावर ज्ञात करने के लिए परीक्षण पर आए कुल प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तियों या उत्तरदाताओं के दो समूह तैयार कर लिए जाते हैं। ऐसे समूह सभी उत्तरदाताओं को दो बराबर बराबर भागों, जैसे ऊपर से 50% टॉप 50% नीचे के पचास प्रतिशत या ऊपर का 60% तथा नीचे का 40% या अन्य कोई अनुपात में बांटकर तैयार कर लिए जाते हैं। इस सिलसिले में केली 1939 द्वारा दिया गया सुझाव अधिक वैज्ञानिक माना गया है। उनका मत है कि ऐसे कार्य के लिए ऊपर से 27% तथा नीचे से 27% व्यक्ति को परीक्षण पर उनके कुल प्राप्तांक के आधार पर यदि चयन किया जाता है तो यह अधिक विभेदन करने के योग्य होगा तथा इसमें परीक्षण निर्माणकर्ता के समय एवं श्रम की भी काफ़ी बचत होगी। पैराग्राफ चेंज, इसके लिए केली ने यह सुझाव दिया कि उत्तरदाता और या व्यक्तियों की कुल संख्या 370 होनी चाहिए ताकि इसका ऊपरी 27% में 100 व्यक्ति तथा निचली 27% में भी 100 व्यक्ति हो जाए। ऐसा करने के लिए 370 व्यक्तियों को परीक्षण पर आए कुल प्राप्तांक के आधार पर उच्चतम से निम्नतम की दिशा में पहले सुव्यवस्थित कर लिया जाता है और इसके बाद ऊपर से 100 केसेस या व्यक्तियों को यानी 27% तथा नीचे से 100 व्यक्तियों को यानी 27% को ले लिया जाता है। ऊपर के 100 व्यक्तियों को उच्च समूह तथा नीचे के 100 व्यक्तियों को निम्न समूह कहा जाता है। प्रत्येक एकांश पर इन दोनों समूह के सही प्राप्तांकों का अंतर भी याद किया जाता है और फिर क्रांतिक अनुपात के सहारे इन दोनों के समूह के अंतरों की सार्थकता की जाँच की जाती है। अगर इन दोनों समूहों के बीच का अंतर धनात्मक आता है और वह सार्थक हो जाता है तो उस एकांश को परीक्षण में सम्मिलित कर लिया जाता है। गिलफोर्ड ने काही वर्ग परीक्षण के सहारे एकांश की विभेदन शक्ति ज्ञात करने का भी सुझाव दिया है। इस तरह के काही वर्ग परीक्षण का प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि उच्च समूह तथा निम्न समूह में व्यक्तियों की संख्या बराबर बराबर हो। इस वर्ग का सूत्र इस प्रकार है, एक्स टू दी पावर 2 = 2n under bracket pu minus pl bracket close to the power 2/4pq। यहाँ x to the power 2 काई वर्ग की स्क्वायर n = व्यक्तियों के उत्तरदाताओं की कुल संख्या पी यू इज इक्वल टू उच्च समूह में सफल व्यक्तियों का अनुपात पी एल इज इक्वल टू निम्न समूह में सफल व्यक्तियों का अनुपात पी इज इक्वल टू पी यू तथा पी वन का अंकगणितीय माध्य क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी। यदि कोई वर्ग सार्थक आता है तो एकांश को धनात्मक द्विभेदन शक्ति से पूर्ण माना जाता है और उनका चयन अंतिम रूप से परीक्षण के लिए कर लिया जाता है। पैराग्राफ चेंज मार्शल तथा हेल्स 1972 ने विभेदन शक्ति ज्ञात करने का एक सूत्र दिया है जिसका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब उच्च समूह में 27% केसेस या व्यक्ति तथा निम्न समूह लोअर ग्रुप से भी 27% केसेस या व्यक्ति हों। इसका सूत्र फॉर्मूला इस प्रकार से है, वी इज इक्वल टू आर यू बाई एन यू माइनस आर एल बाई एन एल। वी इज इक्वल टू आर यू माइनस आर एल बाई एन यू। यहाँ वी इज इक्वल टू एकांश की विभेदन शक्ति या वैधता, आर यू इज इक्वल टू उच्च समूह में सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की संख्या, आर एल इज इक्वल टू निम्न समूह में सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की संख्या, एन यू इज इक्वल टू उच्च समूह में व्यक्तियों की कुल संख्या, एन वन इक्वल टू निम्न समूह में व्यक्तियों की कुल संख्या। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए एन यू इज इक्वल टू 100 तथा एन एल इज इक्वल टू 100 है। किसी परीक्षण की एकांक संख्या 5 पर आर यू इज इक्वल टू 90 है तथा आर एल इज इक्वल टू 10 है तो इसका वी इस प्रकार होगा, वी इज इक्वल टू आर यू बाई एन यू माइनस आर एल बाई एन एल इज इक्वल टू 80 बाई 100 माइनस 10 बाई 100 इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.10 इज इक्वल टू 0.70। अब मान लिया जाए कि एकांश संख्या 12 पर आर यू इज इक्वल टू 40 तथा आर एल इज इक्वल टू 40 है तो इसका वी इस प्रकार ज्ञात होगा, वी इज इक्वल टू आर यू बाई एन यू माइनस आर एल बाई एन एल इक्वल टू 0.40 बाई 100 माइनस 0.40 बाई 100 इज इक्वल टू 0। अब मान लिया जाए कि एकांश संख्या 13 पर आर यू इज इक्वल टू 40 तथा आर टी इज इक्वल टू 40 हो तो इसका वी इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, वी इज इक्वल टू आर यू बाई एन यू माइनस आर टी बाई एन टी इज इक्वल टू 40 बाई 100 माइनस 60 बाई 100 इज इक्वल टू 0.40 माइनस 0.60 इज इक्वल टू माइनस 0.20। यहाँ एकांश संख्या 5 का वी इज इक्वल टू 0.70 है तथा एकांश संख्या 12 का वी इज इक्वल टू 0 है तथा एकांश संख्या 13 का वी इज इक्वल टू माइनस 0.20 है। स्पष्ट है कि एकांश संख्या 5 में धनात्मक विभेद शक्ति है, एकांश संख्या 12 में अविभेदन शक्ति है तथा एकांश संख्या 13 में ऋणात्मक विभेदन शक्ति है। अंतिम दोनों तरह के एकांशों को परीक्षण निर्माण करता है परीक्षण में सम्मिलित नहीं करके उसे या तो रद्द कर देता है या उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर देता है। पैराग्राफ चेंज शोध मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि 0 से -0.30 का तक का वी या विभेदन शक्ति वाले एकांशों को परीक्षण में बिल्कुल ही सम्मिलित नहीं करना चाहिए। 0 से +0.30 तक वी वाले एकांशों में विभेदन शक्ति बहुत ही कम होती है, अतः उन्हें उन्नत बनाने के लिए उपयुक्त सुझाव पाने वाले एकांशों की श्रेणी में रखना चाहिए। +0.30 से ऊपर वाले एकांशों में विभेदन शक्ति पर्याप्त होता है, अतः इन एकांशों के अंतिम रूप से परीक्षण में सम्मिलित करने के लिए चयन कर लेना चाहिए। सहसंबंधात्मक प्रविधि एकांशों की विभेदन शक्ति को मापने के लिए कई शोधकर्ताओं ने विभिन्न तरह के सहसंबंधात्मक प्रविधि का प्रतिपादन किया है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक एकांश का कुल प्राप्तांक एक तरह का आंतरिक कसौटी होता है। लिंडक्विस्ट 1951 ने इसे आंतरिक संगतता एकांश विभेदन सूचकांक की संज्ञा दिया है। कोई एकांश अपने आंतरिक कसौटी अर्थात कुल प्राप्तांक के साथ अधिक संबंधित होता है तो यह कहा जाता है कि उस एकांश द्वारा ठीक वही गुण या क्षमता का मापन हो रहा है जो पूरे परीक्षण द्वारा हो रहा है, अतः एकांश में वैधता यानी विभेदन क्षमता है। इस तरह के सहसंबंध को एकांश योग से संबंध कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज विभेदन क्षमता ज्ञात करने में जिन सहसंबंधात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है उसमें घूर्णन अघूर्णन विधि द्विपंक्तिक आर टेट्राकोरिक आर तथा फाई कोफिशियंट अधिक महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि इन सहसंबंध विधियों द्वारा भी या विभेदक शक्ति डिस्क्रिमिनेशन पावर ज्ञात करने में समय एवं श्रम दोनों ही काफ़ी अधिक लगते हैं, अतः फ्लैनिगन ने एक सुगम उपाय बतलाया है। उन्होंने अपने विशेष स्रोत के आधार पर इबेक आलेख का निर्माण किया है, जिसके आधार पर यदि उच्च समूह n इज इक्वल टू 100 तथा निम्न समूह लोअर ग्रुप में भी n इज इक्वल टू 100 हो, तो यदि इन दोनों समूहों में सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों का अनुपात मालूम हो तो बिना विस्तृत परिकलन किए हुए ही द्विपंक्तिक आर टेट्राकोरिक आर तथा फाई गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। चित्र 5 में उदाहरण के रूप अंक पंक्तिक आर ज्ञात करने का फ्लैगनिगन द्वारा प्रतिपादित एबेक आलेख को दिखलाया गया है। जैसे मान लिया जाए कि किसी एकांश पर उच्च समूह में सही उत्तर देने वालों का अनुपात 0.80 है तथा निम्न समूह में सही उत्तर देने वालों का अनुपात 0.20 है, तो इसका अंक द्विपंक्तिक आर पॉइंट वाइजीरियल आर चित्र के अनुसार 0.70 होगा। एरर ऑफ चेंज विभिन्न शोध मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों जैसे एडकिंस एवं टिप्स 1991, डुबोइस 1989, ज्यूवेटन 1970 ने अपने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बतलाया है कि उन एकांशों का चयन परीक्षण टेस्ट में सम्मिलित करने के लिए अंतिम रूप से कर लेना चाहिए जिनका सहसंबंध गुणांक 0.15 या उससे ऊपर हो, इससे कम या सभी ऋणात्मक सहसंबंध प्राप्त करने वाले एकांशों को रद्द कर परीक्षण से हटा देना चाहिए। तरफ चिन्ह एकांश की कठिनता स्तर एवं विभेदन शक्ति में संबंध रिलेशन बिटवीन डिफिकल्टी लेवल एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ एन आइटम। मनोवैज्ञानिक परीक्षण या शैक्षिक परीक्षण के एकांशों की कठिनता स्तर एवं विभेदन शक्ति में घनिष्ठ संबंध होता है। एकांश की कठिनता स्तर का संबंध एकांश के विभेदन सूचकांक से सीधा होता है। जो एकांश काफ़ी आसान होता है या काफ़ी कठिन होता है वह व्यक्तियों या उत्तरदाताओं को आपस में ठीक ढंग से विभेदित नहीं कर पाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे एकांशों की विभेदन शक्ति कम होती है। अधिकतम विभेदन के लिए यह आवश्यक है कि एकांश पर उच्च समूह के सभी सदस्य सफल हों तथा निम्न समूह के सभी सदस्य उसी एकांश पर असफल हों या गलत उत्तर दिए हों। इस तरह से वैसे एकांश जो पूर्ण रूपेण विभेदन कर रहे हों कठिनता असर डिफिकल्टी लेवल 0.5 होगा। जैसे मान लिया जाए कि उच्च समूह 100 सदस्य तथा निम्न समूह में 100 सदस्य हैं। किसी एकांश पर उच्च समूह के सभी सदस्यों ने सही उत्तर दिया तथा समूह के सभी सदस्यों ने गलत उत्तर दिया, अतः इस एकांश की कठिनता स्तर सूत्र 1 के अनुसार 100/200=0.50 होगी। इस एकांश में अधिकतम विभेदन हो रहा है, परंतु वह एकांश जो बिल्कुल ही विभेदन नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है उसकी विकर्णता अस्तर 0.50 हो सकती है। जैसे मान लिया जाए किसी एकांश पर उच्च समूह के 100 सदस्यों में से 50 ने सही उत्तर दिया तथा निम्न समूह के 100 सदस्यों में से भी 50 सदस्यों ने सही उत्तर दिया, अतः इसका विभेदन शक्ति 0 होगा। परंतु कठिनता अस्तर 50+50/200=100/200=0.50 होगी। इसका मतलब यह हुआ कि उच्च विभेदन सूचकांक के लिए एकांशों की कठिनता स्तर 0.5 ही हो या आवश्यक नहीं है, बल्कि एक आदर्श कठिनता स्तर जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है की जरूरत होती है। परंतु आदर्श कठिनता स्तर से भी हमेशा उच्च विभेदन शक्ति होगी। इस निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती है। पेयर ऑफ चेंज एकांश विश्लेषण करने का एक नमूना। छात्र यह देख चुके हैं कि एकांश विश्लेषण में अन्य बातों के अलावा मूल रूप से प्रत्येक एकांश की कठिनता स्तर डिफिकल्टी लेवल तथा विभेदन सूचकांक के बारे में जानने की कोशिश की जाती है और फिर इन्हीं दोनों सूचकांकों के आलोक में एकांश का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। अब हम यहाँ एक उदाहरण देकर यह बतलाएंगे कि एकांश विश्लेषण कैसे किया जाता है तथा इसके संपन्न होने में कौन कौन चरण सम्मिलित होते हैं। एकांश विश्लेषण करने में निम्नांकित चरण महत्वपूर्ण होते हैं। एक, सबसे पहले परीक्षण के प्रत्येक एकांश का अंकन स्कोरिंग किया जाता है, जिसमें सही उत्तर के लिए कुछ निर्धारित अंक जैसे 1, 2, 3 आदि दिए जाते हैं। 2, प्रत्येक व्यक्ति या उत्तरदाता द्वारा सभी एकांशों पर सही उत्तर के लिए प्राप्त अंकों का एक योग तैयार किया जाता है, जिसे कुल प्राप्तांक कहा जाता है। मान लिया जाए कि 370 छात्रों के समूह पर 30 एकांश वाले बुद्धि परीक्षण का क्रियान्वयन किया गया है और प्रत्येक एकांश के 4 अनुक्रिया विकल्प हैं। प्रत्येक एकांश पर सही अनुक्रिया के लिए एक ही अंक दिया गया है तथा गलत अनुक्रिया के लिए शून्य अंक दिया गया है। इस तरह 370 छात्रों के इस 30 एकांश वाले बुद्धि परीक्षण पर कुल प्राप्तांक प्राप्त हो जाते हैं। पैराग्राफ चेंज 3, इन सभी 370 कुल प्राप्तांकों को घटते क्रम में सुव्यवस्थित कर लिया जाता है, यानी उच्चतम प्राप्तांक को सबसे ऊपर रखते हुए सबसे अंत में न्यूनतम प्राप्तांक को रख दिया जाता है। 4, इसके बाद ऊपर से 27% यानी 100 केसेस तथा नीचे से 27% यानी 100 केसेस का चयन कर लिया जाता है। ऊपर वाले 27% व्यक्तियों को उच्च समूह तथा नीचे वाले 27% व्यक्तियों को निम्न समूह कहा जाता है। 5, प्रत्येक एकांश के चारों अनुक्रिया विकल्पों के प्रति उच्च समूह के सदस्यों द्वारा किए गए अनुक्रियाओं की गिनती कर ली जाती है। उदाहरण के रूप में एकांश संख्या के चारों अनुक्रिया विकल्पों के प्रति उच्च समूह के सदस्यों द्वारा किए गए अनुक्रियाओं को तालिका 21 के कॉलम 1 में दिखलाया गया है। उसी तरह कॉलम 2 में निम्न समूह के सदस्यों द्वारा एकांश संख्या 1 के ही चारों अनुक्रिया विकल्पों के प्रति की गई अनुक्रियाओं को दिखलाया गया है। 6, इसके बाद उच्च समूह के उन सदस्यों की संख्या जिसने एकांश का सही उत्तर दिया है में से निम्न समूह के उन व्यक्तियों की संख्या को घटा लिया जाता है। तालिका 21 में हम देखते हैं कि इस तरह के घटाव की प्रक्रिया संपन्न होने पर 80-20=60 आता है, जिसे कॉलम 3 में दिखलाया गया है। ध्यान रहे कि एकांश संख्या 1 के उत्तर के रूप में 4 अनुक्रियाएँ ए, बी, सी तथा डी हैं, जिसमें से सही अनुक्रिया बी है। 7, इसके बाद प्राप्त अंतर यानी 60 को उच्च समूह या निम्न की संख्या द्वारा विभाजित कर दिया जाता है। अतः 60 को 100 से विभाजित किया जाता है जो 0.760 आया। दूसरे शब्दों में सूत्र 6 द्वारा बी तथा डी ज्ञात किया जाता है। पैराग्राफ चेंज 8, बीच के समूह मिडिल ग्रुप यानी 46% केसेस जिसकी संख्या यहाँ 170 है में से उन व्यक्तियों की कुल संख्या का पता लगा ली जाती है जिन्होंने इस एकांश के सही अनुक्रिया के रूप में उत्तर दिया है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या 110 है जिसे कॉलम 5 में दिखलाया गया है। यहाँ अंत्य समूह एक्सट्रीम ग्रुप नहीं तैयार करके सभी व्यक्तियों को 2 बराबर भागों में बांट कर समूह तैयार किया जाता है। यहाँ यह चरण स्टेप नहीं होता है यानी कॉलम 5 वैसी परिस्थिति में नहीं होगा। 9, इसके बाद उच्च समूह निम्न समूह तथा मध्य समूह के उन व्यक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जाता है जिन्होंने सभी उत्तर दिया है। यहाँ यह संख्या क्रमशः 80+20+110=210 है जिसे कॉलम 6 में दिखलाया गया है। पैराग्राफ चेंज 10, इसके बाद एकांश की कठिनता असर यानी पी को ज्ञात किया गया है। यहाँ पी सूत्र आई तथा सूत्र 2 दोनों से ज्ञात किया गया है। सूत्र 1 के अनुसार P=210/327=0.56 आया है तथा सूत्र 2 के अनुसार 80+20 100/200=0.50 आया है। इन दोनों मानों को कॉलम 7 में दिखलाया गया है। इसमें से किसी एक द्वारा P ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि दोनों सूत्रों से करीब एक ही तरह का उत्तर आता है। अच्छा यह होगा कि जब डी या बी सूत्र 6 द्वारा ज्ञात की करने का निर्णय किया गया है तब पी को सूत्र 2 द्वारा ही ज्ञात करना अकलमंदी का काम होता है। पैराग्राफ चेंज, इस तरह से स्पष्ट हुआ कि एकांश विश्लेषण में कई चरण सम्मिलित होते हैं इस जिनके अनुसार उसकी प्रक्रिया संपन्न होती है। इसी तरह बारी बारी से परीक्षण के सभी एकांशों का विश्लेषण किया जाता है। वैसे एकांश जिनका डी या वी का मान वैल्यूज शून्य ऋण में आता है उन्हें परीक्षण से बेकार समझकर हटा दिया जाता है। वैसे एकांशों को समुचित ढंग से परिवर्तित कर दिया जाता है जिसका डी या वी का मान बहुत कम होता है परंतु धनात्मक होता है। वैसे शून्य दशमलव एक, शून्य दशमलव शून्य आठ, शून्य दशमलव दो चार आदि वी का मान रहने पर उन एकांशों को परिवर्तित करके उन्नत इम्प्रूव्ड करने की कोशिश की जाती है। पैराग्राफ चेंज, एकांश विश्लेषण की कुछ समस्याएँ, सम प्रॉब्लम्स ऑफ आइटम एनालिसिस। एकांश विश्लेषण करने में कुछ समस्याएं भी सामने आ जाती हैं। शोध मनोवैज्ञानिक ने एकांश विश्लेषण में निम्नलिखित समस्याओं को मूल रूप से उजागर किया है। एक, एकांश योग सहसंबंध में मिथ्या सहसंबंध की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ स्पीयस कोरिलेशन इन आइटम टोटल विश्लेषण, जब भी एकांश की वैधता, वैलिडिटी या विधन शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन पावर ज्ञात करने के लिए व्यक्ति के एकांश को कुल प्राप्तांक टोटल स्कोर के साथ सहसंबंधित को रिलेट किया जाता है। प्राप्त सहसंबंध गुणांक को रिलेशन कोफिशियंट मिथ्या ढंग से सुप्रियसली ऊंचा हो जाता है। इस तरह की समस्या समझाती है परीक्षणों में सबसे अधिक होता है। यहाँ की सभी एकांश आइटम्स द्वारा करीब करीब एक ही शील गुण या क्षमता का मापन होता है। किसी एकांश का एकांश योग से संबंध मिथ्या ढंग से अधिक होने से शोधकर्ता यह समझने की भूल कर बैठता है कि उस एकांश में वैधता या विधेय शक्ति अधिक है, जबकि सच्चाई यह होती है कि ऐसी शक्ति उसमें नहीं होती है। इस समस्या के समाधान के लिए शोधकर्ता को दो बातों पर ध्यान देना होगा। पहला तो यह है कि परीक्षण में एकांश की संख्या अधिक रखनी होगी तथा परीक्षण में सिर्फ मध्य कठिनता स्तर के एकांशों को नहीं बल्कि उच्च कठिनता स्तर तथा निम्न कठिनता स्तर दोनों तरह के एकांशों को सम्मिलित करना होगा। दो द्विभाजी एकांशों से संबंधित समस्या प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिकोटोमस आइटम मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा शैक्षिक परीक्षणों में हाँ नहीं सही गलत सहमत असहमत वाले अनुक्रिया विकल्पों वाले एकांशों की परमार है। ऐसे एकांशों को द्विभाजी एकांश कहा जाता है। प्रायः देखा गया है कि ऐसे एकांशों की तो अगमन कुंजी इस प्रकार की होती है कि एकांशों से सहमति व्यक्त करने पर प्लस एक का अंक दिया जाता है तथा असहमति व्यक्त करने पर जीरो अंक दिया जाता है। यदि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि परीक्षण में 200 एकांश है जिसमें से 50 गुणात्मक है तथा 50 नकारात्मक है, ऐसी परिस्थिति में उक्त अंकन कुंजी स्कोरिंग की के अनुसार प्रत्येक एकांश का अन्य एकांशों के साथ का औसत सहसंबंध शून्य के करीब होगा और इसलिए सभी एकांश योग सहसंबंध भी शून्य के करीब होगा। इसके अलावा सभी धनात्मक एकांश का सहसंबंध सभी नकारात्मक एकांश के साथ नकारात्मक होगा। ऐसी परिस्थिति में यहाँ सभी एकांशों का एकांश योग सहसंबंध करीब करीब शून्य होता है या नकारात्मक होता है। एकांशों का अंतिम चयन एकांश योग सहसंबंध के आधार पर करना संभव नहीं है। पर चेंज इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि परीक्षण निर्माणकर्ता एकांशों की अंकन विधि इस ढंग से कार्य करे कि अधिकतर एकांश योग सहसंबंध धनात्मक हो सके। जैसे उक्त उदाहरण में यदि अंकन विधि इस ढंग की कर दी जाए कि सभी धनात्मक कथनों के प्रति सहमति व्यक्त करने पर प्लस एक तथा सभी ऋणात्मक कथनों के साथ असहमति व्यक्त करने पर माइनस एक दिया जा सके, तो ऐसी परिस्थिति में अधिकतर एकांश योग सहसंबंध धनात्मक होंगे और एकांशों का अंतिम रूप से चयन संभव हो पाएगा। पैरा चेंज तीन अवांछित तथ्यों के नियंत्रण से संबंधित समस्या। समजातीय परीक्षण में आदर्शतः सभी एकांशों द्वारा एक ही शील गुण या क्षमता का मापन होता है, अतः ऐसे परीक्षण के एकांशों को आपस में काफ़ी सहसंबंधित होना चाहिए तथा अन्य कोई दूसरा कारक या तत्व से उसका सहसंबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि ऐसे परीक्षण के एकांश कुछ अन्य अवांछित कारकों के साथ ही सहसंबंधित हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप आंकिक अभिक्षमता परीक्षण को ही ले लिया जाए, इस परीक्षण द्वारा अस्पष्टता व्यक्ति के आंकिक परिकलन की अभिक्षमता एप्टीट्यूड का मापन तो होता है ही, साथ ही साथ शाब्दिक समझ वर्बल कॉम्प्रिहेंशन जैसे कार्य का भी मापन हो जाता है। अतः इस परीक्षण के एकांश आंकिक परिकलन की अभिक्षमता के अलावा शाब्दिक समझ जैसे अवांछित कारक के साथ भी सहसंबंधित हो जाते हैं। जब परीक्षण निर्माणकर्ता एकांश योग सहसंबंध के आधार पर एकांशों का चयन करता है तो समस्या यह उठती है कि इस सहसंबंध में जो अवांछित कारक का योगदान हो रहा है उससे मुक्त करके एकांशों का चयन कैसे किया जाए। इस समस्या का समाधान करने के लिए परीक्षण निर्माणकर्ता परीक्षण में अंतिम रूप से रखे जाने वाले एकांशों की वास्तविक संख्या से 4 गुना अधिक एकांश लेता है। जैसे यदि उसे 50 एकांशों वाला परीक्षण का निर्माण करना है तो वह 200 एकांश लेकर एकांश विश्लेषण करेगा। प्रत्येक को कुल प्राप्तांक तथा साथ ही साथ अवांछित कारक के साथ सहसंबंधित किया जाएगा। वैसे एकांशों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा जो कुल प्राप्तांक के साथ तो काफ़ी सहसंबंधित हो जाते हैं परंतु अवांछित कारक के साथ सहसंबंधित न के बराबर होते हैं। वैसे एकांशों को रद्द कर दिया जाता है जिनका सहसंबंध कुछ प्राप्तांक के साथ कम परंतु अवांछित कारक के साथ अधिक होता है। 4 अटकलबाजी या संयोग सफलता से संबंधित समस्या। एकांश विश्लेषण में कुछ समस्या अटकलबाजी या संयोग सफलता के कारण भी होता है। अटकलबाजी की समस्या द्विकल्पी एकांशों में अधिक होता है, क्योंकि इसमें मात्र अटकलबाजी के आधार पर सफलता प्राप्त की संभावना 50% होती है। ऐसी संभावना बहुविकल्पी एकांशों में कम हो जाती है। अटकलबाजी द्वारा प्राप्त सफलता का परिणाम यह होता है कि इससे कठिनता सूचकांक तथा विभेदन सूचकांक अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है, जो एक तरह का भ्रामक सूचक होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए परीक्षण विशेषज्ञों ने प्राप्तांक की शुद्धता में संशोधन करने की सिफारिश किया है, और इसके लिए उन लोगों ने कुछ विशेष सूत्र का भी निर्माण किया है। सूत्र 3 एक ऐसा ही सूत्र है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि एकांश विश्लेषण की कई समस्याएं हैं जिनकी ओर परीक्षण विशेषज्ञों का ध्यान दिया गया है। सौभाग्यवश इन समस्याओं का कुछ संभावित समाधान भी हमारे सामने उपलब्ध है, जिसके कारण परीक्षण निर्माणकर्ता को एकांशों का अंतिम रूप से चयन करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है।